आज हम बाबा के तीन मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। आप सबको याद है संडे की मुरली सवेरे की, श्याम को तो बाबा आए थे और हम सबको बहुत प्यार दिया। ज्ञान के सागर ने प्यार का सागर बनकर अपना पाठ बजाया, तो बाबा का ये स्वरूप तो बड़ा आकर्षित करने वाला है। जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा डायरेक्ट आते थे, दादी के तन में भी डायरेक्ट आए, आते ही आशीर्वाद दे दिया और ओम शांति से शुरू की मुरली। तो बाबा बहुत प्यार देते हैं, उनका प्यार ही बहुत अच्छी पालना है। जो बहुत पुराने हो गए हैं उनको शायद लगता होगा कि बाबा का पाठ तो बड़ा हल्का हो गया, पर जो पहली बार आते हैं उन्हें लगता है वाह भगवान को देख लिया। एक माता अपना अनुभव लिख के दे गई, जब बाबा आए और जब तक मुरली चली मुझे स्टेज पे ब्रह्मा बाबा के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया, और जब भोग खिलाना और मुरली पूरी हो गई दादियां गई तो कहा मुझे श्री कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया वहां, तो कहा ये क्या था। अभी उसने पूछा हो तो पत्र लिख के चली गई। तो ये भिन्न भिन्न तरह के सुंदर अनुभव बाबा के द्वारा अब होते हैं। ये तो एक दो ने बताया, लेकिन सभा में जो बहुत भाई बहने बैठे सबको ही ये बहुत सुंदर अनुभव अलग अलग तरह से होते रहे हैं। तो बाबा की ये पालना का एक और सुंदर तरीका, आते ही आशीर्वाद ब्लेसिंग्स और फिर प्यार भरी मुलाकात। हम सब इसमें संतुष्ट रहेंगे अब, क्योंकि ज्ञान के खजाने से तो बाबा ने भरपूर कर दिया, और उसके लिए ही कहा तुम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। हम सभी बहुत धनवान हैं, पता है अपने खजानों का। शुरू में दादी जान की कहा करती थी, माताओं को आदत होती है ना अलमारियों में कुछ अच्छी चीज रख के रोज खोल के देखना, बड़ा अच्छा माल है, ज्वेलरी है। तो कहती थी ऐसे ही अपने सब खजाने रोज खोल कर देखा करो, कितने महान और विशाल खजाने बाबा से हमें मिले हैं या नहीं, कौन कौन से गिनाएंगे जरा। प्रताप भाई शुरू कर दें। पहला ज्ञान का था खजाना, लगता है ये खजाना है या नहीं, या घर बैठे मिल गया, बिल्कुल सहज मिल गया, कुछ सोचा ही नहीं, लंबी चौड़ी फिलोसोफी सिंपल सिंपल शब्दों में मिल गई, ये बहुत बड़ी चीज है। राह मिल गई, मंजिल दिख गई, मंजिल पर पहुंचने का बल मिल गया, और बाबा किस किस तरह से हमारे पास आया, स्वयं भगवान ही सबसे बड़ा खजाना हमें मिल गया। और कौन से खजाने मिले, संतोषम परम सुखम, संतुष्टता का खजाना। बहनों को कौन सा मिला है, गुणों का खजाना मिला और शक्तियों का खजाना मिला। आगे की कन्याओं को क्या मिला, खुशी का खजाना मिला। और भी कुछ मिला, एक और सुना दो। समय भी एक खजाना मिल गया, लोगों को पता नहीं कि समय बहुत बड़ी संपत्ति है, और हमारा समय कैसा, जिसमें कदम कदम पर पद्मों की कमाई होती है। लगता है पद्मों की कमाई है या ऐसे ही बाबा बहलाता है, कदम कदम पर पद्मों की कमाई उनकी होती है जो कदम कदम पर योगयुक्त होकर चलते हैं। उनके वाइब्रेशन संसार का बहुत बड़ा कल्याण करते हैं, कमाई होती है। बाबा का एक महावाक्य मैं कई बार सुनाया है यहां, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता रहा था, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है। देखो सोच लो, इसलिए उसका फल भी तुम्हें पदम गुना मिल जाता है। तो बहुत बड़ी चीज है कदम कदम में पदम, क्योंकि हम जो पुण्य करते हैं संसार में एक पुण्य का एक फल, लेकिन हमारे एक पुण्य का अथाह फल, क्योंकि हम पूर्वज हैं, क्योंकि हम पूर्वज हैं, इसलिए। तो सभी अपने को इन खजानों से भरपूर करें। और कौन से खजाने मिले इधर वाले भाइयों को? नारायण, संकल्पों का खजाना। देखिए, एक एक संकल्प हमें महान बना देता है। संकल्प ही मनुष्य को डाउन कर देते हैं। एक संकल्प ही तो होता है ना, याद होगा आज की मुरली बाबा ने क्या कहा, कई चल चल के फिर निकल जाते हैं। एक संकल्प ही तो होता है ना, अरे भाई क्या करेंगे, बहुत साल चल के तो देख लिया, कुछ ज्यादा आनंद तो आया नहीं, कब तक ऐसे चलेंगे, चलो अपने घर। एक संकल्प मनुष्य को बैक कर देता है, संकल्पों का खजाना। और बोले भाई लोग, नायब, पवित्रता का खजाना, जिसमें सुख शांति समाई है, खुशी सुख और शांति, सचमुच बहुत बड़ा खजाना है। ये उन लोगों से पूछो जो धनवान तो बहुत हैं, लेकिन जिन्हें रात को नींद नहीं आती, वो बताएंगे कि धन संपत्ति से बड़ा खजाना ये सब है, खुशी सुख और शांति, जिसका मूल है पवित्रता। तो पवित्रता का बहुत बड़ा खजाना मिला। रामू, तुम्हें कौन सा मिला? बोलो, भी रह गए बच्चे। प्यार भी एक खजाना है, अतिंद्रिय सुख भी एक खजाना है, दुआएं भी खजाना है, श्रेष्ठ कर्म भी बहुत बड़े खजाने हैं, ये सब पुण्य बहुत बड़े खजाने, ये सब खजाने हमें मिले हैं। तो हम सभी क्या हो गए? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, माला माल। अपने को कोई भी गरीब नहीं समझे। कन्याएं गरीब हैं, नौकरी कर लें, इसलिए गरीब है ना, तो नौकरी कर लें थोड़ी सी, भले कर लें, लेकिन हम बहुत धनवान हैं। इसलिए मुझे याद आ गई एक बात, शुरू में कोई व्यक्ति पांडव भवन में आया, कपड़े ये हम सबके, उसने क्या कहा दूसरों को, कहा जो साथी थे उसके, कि यहां सब लोग बहुत सेठ रहते हैं, आपकी संस्था सेठ हो गई है, वही गरीबों को तो यहां आने का मौका नहीं है। उसे पूछा क्यों, कि तो सबकी ड्रेस, सबके चेहरे तो देखो, इतना खिला हुआ चेहरा किसी धनवान का ही हो सकता है, गरीबों का नहीं। उसने बताया कि ये सब गरीब ही हैं, रोज दो बार नहाते हैं, ज्ञान योग में स्नान करते हैं, चेहरे आनंद से भरपूर हैं। तब उसे पता चला कि यार ये तो ठीक बात है, धनवानों के चेहरे ऐसे थोड़ा ही होंगे। ठीक है, उनका घर बहुत सुंदर हो सकता है, फर्नीचर सोफा सेट ये वो ब्यूटीफुल हो सकते हैं, लेकिन चेहरे और कर्म वो जरूरी नहीं बहुत सुंदर हों, किसी के सुंदर भी होते हैं। तो सचमुच हम जैसा धनवान और कोई नहीं। तो हमारी बुद्धि कहां नहीं जानी चाहिए? अब हरीश बताएगा, दुनियावी पदार्थों के आकर्षण में। धन भी तो चाहिए मनुष्य को, ये नहीं कि धन की जरूरत नहीं है, पर हम धन के पीछे न भागे। और जिसके पास ये अलौकिक धन होता है, उसे स्थूल धन की कमी कभी नहीं पड़ती। कई आप में से सब कुछ छोड़ आए है ना, वीके कॉलोनी में आके रहने लगे, कोई यज्ञ में समर्पित हो गए, कोई कमी हो रही है? कुछ कमी नहीं है। ये भी नहीं पता सब्जी क्या भाव है, पता किसी को? तेल महंगा हो गया या चीनी बहुत महंगी, दो दो गिलास चाय पी रहे एक ही साथ, ये भी नहीं थोड़ी कम पी लें, चीनी महंगी हो गई, क्यों डॉक्टर सीमा? नहीं पीते, नहीं कोई कमी है ना, भरपूर है सब। आटे दाल के भाव का पता ही नहीं है, भगवान खिला रहा है, हम खा के आनंदित हो रहे हैं ब्रह्मा भोजन, तो ये सबसे बड़ा धन हुआ ना, निश्चिंतता। निश्चिंतता बहुत बड़ा धन है, और जो समर्पित होते हैं उनको ये धन पहले दिन से मिलने लगता है। जीवन निश्चिंत, समर्पित होने का सबसे बड़ा अवार्ड बेफिकर। अब बादशाह बने या न बने, बेफिकर तो बन ही जाते हैं। तो ऐसा रिचेस्ट, ऐसे वेल्थ से भरपूर हम सब बाबा के बच्चे हैं। हाईएस्ट, क्या अर्थ है हाईएस्ट का? माताएं सुन तो लिया हाईएस्ट, अब वो सुनाने वाले ने भी नहीं सुना कि हाईएस्ट क्या होता है। बोलो, कन्याएं सुना दो, इंग्लिश तो जानती है ना इतना तो। महान, बहुत महान, बहुत ऊंचे, हम हाईएस्ट हैं, हैं? लगता है हम बहुत महान हैं। जब भगवान की नजर ऊपर से पड़ी होगी तो कौन कौन उन्हें नजर आए? हर आत्मा की एक चमक होती है, उसे वो चमक साफ दिखती है, सबकी उसे चमक दिखाई दी। ये आत्माएं हैं मेरे काम की, ये आत्माएं हैं जो मुझे स्वर्ग रचने में बहुत बड़ा योगदान देंगी। योगदान केवल धन का नहीं होता है, योगदान बहुत सूक्ष्म चीज है, उसमें हमारी स्थिति, हमारी प्योरिटी सबसे बड़ा सहयोग है बाबा के इस महान कार्य में। कोई धन तो बहुत लगा दे सेवाओं में, लेकिन स्थिति महान न बनाए, उसका बाबा के पास इतना महत्व नहीं होता। जिसकी स्थिति बहुत अच्छी, प्योरिटी बहुत अच्छी, और जो धन से भी बहुत सहयोग करे, उनकी मान्यता बहुत है बाबा के पास। तो हम बहुत महान हैं, अपने को कभी भी साधारण नहीं समझना है। बिल्कुल किसी के मन में ऐसी विचारधारा हो, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, साधारण हूं, मैं तो गरीब हूं, साधारण हूं, मेरा तो यहां भी कोई मान शान नहीं, कोई पूछता ही नहीं, हम तो सेवा करके घर आ जाते हैं, खा पी के सो जाते हैं, हम तो साधारण हैं। सभी इस विचार से ऊपर उठ जाएं, विशेष रूप से पहले मैं उनको कहूंगा, दूसरे लोग माइंड न करें जो समर्पित हो चुके हैं। वो सब बोलो, समर्पित वाले बहुत महान हैं, जिन्होंने संसार की सभी इच्छाएं तृष्णाओं का त्याग कर दिया, सफेद वस्त्र पहन लिए। हमारी दादी कहा करती थी, बाबा ने हमें एक चीज से बहुत मुक्त कर दिया, मैचिंग कपड़ों की। कहा हमने सफेद कपड़े उठाए और पहने और चल दिए, नहीं तो बहने मैचिंग में बहुत टाइम लगा देती है, देखने में ही टाइम लग जाता है, पहनना तो बाद में। और बाबा ने, भाई भी करते हैं, इस पैंट पे ये शर्ट पहनी जाए, ये पहना जाए, जीन्स पहनी जाए या क्या पहना जाए, बाबा ने हम सबको सफेद बना दिया, तन से भी और मन से भी। तो महान है या नहीं? इसलिए समर्पित आत्माएं पहले अपनी इस महानता को रियलाइज करें। जिन्होंने पवित्र जीवन बनाया वो बहुत महान है। जो समर्पित हुए उन्होंने जन्म जन्म भगवान को वायदे किए होंगे ना, जब तुम आओगे बलिहार हो जाएंगे, उनको आकर्षण होने लगा। आप में से भी बहुतों का अनुभव है, और भी सुनाते हैं कि हमें तो ज्ञान मिला, अब दुनिया अच्छी नहीं लगती, पढ़ाई है वो, अभी तो चले बाबा के पास, उसकी सेवा में लग जाएं, खिंचाव होने लगा, लोग रोकते रहे, हम खींचते रहे और खींच खींच के आ गए सेवाओं में। ये क्यों होता है? जन्म जन्म भगवान को वचन दिया था, उसका इफेक्ट है ये। बाकी सभी आप सब जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सभी महान हैं। उसमें भी जिन्होंने घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता को अपना लिया, उन जैसा महान कोई नहीं। सवेरे आंख खुलते ही क्या मिलता है? बोल नहीं रही माताएं, क्या मिलता है? पता नहीं, पता नहीं क्या मिलता है आंख खुलते ही? आपको बोलना है आगे वाली कन्याएं, क्या मिलता है आंख खुलते ही? तुम बोलो ना पीछे वाली, जोर से बोलो, क्या मिलता है? बाबा, वरदान से पहले आंख खुली, इसको अनुभव में भी लाना है, आंख खुली और भगवान से मिलन है या नहीं, किस किस को होता है? अच्छा 80%, बाकी जिनको नहीं होता जरा वो हाथ उठा दो, नहीं उठाएंगे कोई भी। आंख खुलते ही भगवान से मिलन होता है, वही तो उठाता है और फिर बुलाता है, आ जाओ मेरे पास, लो देखो कितने माल खजाने तुम्हारे लिए रखे हैं, वरदान रखे हैं, शक्तियां हैं, ले लो जो चाहिए। परमात्मा प्यार की अनुभूति देते हैं बाबा सवेरे। तो महान नहीं हुए संसार में कोई ऐसा होगा कि आंख खुले और भगवान मिले? युग बीत गए लोगों को। और तीसरी अगली मानता, पढ़ाने कौन आता है? आज की मुरली में बहुत था, कई बच्चों को नशा ही नहीं रहता, कौन पढ़ा रहा है? पढ़ाई की वैल्यू, पढ़ाने वाले की वैल्यू, नशा ये बहुत बड़ी चीज है, इससे वो पढ़ाई हमारे जीवन में धारण होने लगती है। ये नहीं कभी गए कभी नहीं गए, आज तो बरसात हो गई छोड़ो, क्लास में जाने वाले तो बहुत हैं, मैं न गई तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ढीले, आज तो बरसात हो गई, आज ठंडी पड़ गई, आज तो आंधी चल गई है, सारे रास्ते बंद हो गए, बहनों को भी तो पता है ना, इसलिए न जाएंगे तो चलेगा, पता तो है, परंतु लॉस किसे होगा? बोलो, घर में मुरली पढ़ लेना और क्लास में जाके पढ़ना, अंतर है या नहीं? क्लास में जाके सुनना, उस फीलिंग में, उस वाइब्रेशंस में, बहुत अच्छी स्थिति में स्थित होकर मुरली सुनना और एक घंटा आत्मा को भरपूर करके घर आना, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, इसको सभी रियलाइज करें। इसलिए जो पढ़ाई में ढीले हैं वो जरा चुस्त हों, हम सभी महान हैं, स्वीकार करें सभी। किसने कहा तुम महान हो? किसी मनुष्य ने नहीं, कोई मनुष्य कहे या हम खुद कहें, लोग कहेंगे बड़े अहंकारी हैं, अपने को महान बता रहे हैं, लेकिन हमें महान कहा भगवान ने, जो हमें जानता है, जो हमें देखता है, जिसे पता है ये देव कुल की महान आत्माएं हैं। कितने जन्म देव कुल में हम सब ने लिए हैं, वो देवत्व हमारे अंदर समाया हुआ है, हम महान हैं। कुमार ध्यान दें, सभी बहुत बैठे हैं, कई भोले लग रहे हैं, साधारण नहीं, नशा ले लें, मैं साधारण नहीं, भगवान के द्वारा चुनी हुई महान आत्मा हूं, इससे जीवन बदलेगा, मैं रिचेस्ट हूं, इससे जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा, बहुत सारी उधेड़ बुन जीवन की समाप्त हो जाएंगी, और मैं महान हूं इस स्मृति से जीवन में महानताएं आ जाएंगी, साधारणता समाप्त हो जाएगी। और वो दिन अब जल्दी समीप आ रहे हैं जब संसार के लोग हमें महान देखेंगे, जय जयकार होगा ना, सारे हीरो एक्टर्स स्टेज पर आ जाएंगे, सारे हीरो एक्टर, सारा संसार जान लेगा हु इज हु। सुनिए बात, भारत में भी एक किताब छपती अच्छी मोटी, हु इज हु, कौन क्या है, उसकी सारी जानकारी दी जाती है, ये डॉक्टर अब्दुल कलाम क्या हैं, फलाना साइंटिस्ट क्या है, और भी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनका परिचय रहता है थोड़ा थोड़ा, तो यहां भी अंत में पता लग जाएगा पूरे सृष्टि चक्र में हु इज हु, हु वाज हु, दोनों चीजों का पता लग जाएगा। तो हम सभी महान हैं, जो अपने को महान समझेंगे वे बोलो महान बन जाएंगे। और जो अपने को साधारण समझेंगे वे साधारण रह जाएंगे। क्या विचार है भाइयों का, ग्रस्त में रहने वाले कुछ भाइयों को मैं देख रहा हूं, सोच रहे हैं, हो सकता है क्या, ये हो सकता है? बोलो, अधर कुमार भाई सब बैठे हैं, प्रताप भाई का तो हो गया, डॉक्टर का भी हो गया, सब महान हैं। इस गुड फीलिंग में रहना। होता क्या है, घरों के छोटे मोटे संघर्ष में मनुष्य को ये नशा नहीं रहता, मैं महान हूं। बहुत सुंदर स्मृति है, मैं तो देखा आज तक डिप्रेशन के रोग और रात को नींद ना आना, दोनों ठीक हो गए मान आत्मा लिखने से। 108 बार लिखा, एक तो मेरे पास अभी अभी आया इसी ग्रुप में, कहा भाई जी मैं तो 10 बार से ज्यादा लिख ही नहीं पाता, कैसे करूं? मैंने कहा क्यों, क्या दिक्कत है तुम्हें? कहा मुझे तो लिखते ही नींद आ जाती है। मैंने कहा तो अच्छी बात है, तो जल्दी उठा करो, लिखने के बाद जल्दी सो के जल्दी उठ जाए करो। कहा मुश्किल से मैं 15 बार लिख पाता हूं, और मैं सोचता हूं मुझे कहा तो था 108 बार लिखने की, ये काम तो मेरे से हो नहीं रहा। मैंने उसे कहा नहीं, तुम्हें 108 बार की जरूरत नहीं, इतना ही काफी है, सुख से सो जाओ, सुख से उठो। हम होलीएस्ट हैं, क्या महिमा की बाबा ने उस मुरली में, देखो हमारे होली स्वरूप की, हमारे पवित्र स्वरूप की बाबा बहुत ज्यादा महिमा करते हैं। महिमा क्यों करते हैं? नहीं, महिमा क्यों करते हैं बोलो, दोनों हमें जगाते हैं, तुम ऐसे महान हो। पहली पवित्रता की महानता बताई, जब तुम परम धाम में हो तो तुम्हारी चमक अन्य आत्माओं की चमक से ज्यादा है। सभी आत्माएं समान नहीं है कि बिंदु है, बस बिंदी बैठी होंगी वहां, हरेक की किरणें फैलती हैं, हरेक के चारों ओर प्रभा मंडल होता है। शास्त्रों में इसको कारण शरीर कह दिया गया है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, आत्मा के चारों ओर जो किरणें फैलती हैं, एक घेरा बन जाता है, सुंदर प्रभा मंडल बन जाता है। तो हम सब आत्माओं की चमक बहुत ज्यादा है, जो जितने होली उसकी चमक उतनी ही ज्यादा ऊपर, उतने ही वो, दूसरी बात बोलो कुमार, उतने ही वो बाबा के समीप। अब कोई सोच सकता है कि परम धाम में हम समीप हो या दूर हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसका उत्तर देना है। कोई सोच सकता है परम धाम में तो कोई फीलिंग है नहीं, मुक्त अवस्था है, हम बाबा के पास हो या दूर हो इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, पर है। बोलो, स्वर्ग में जल्दी नहीं आएगा, उच्च पद पर आसीन होगा। और दूसरी चीज देखो, यहां हम योग अभ्यास में मन बुद्धि से परम धाम में बाबा के साथ रहते हैं, क्या होता है, बाबा के वाइब्रेशन हम में समाते रहते हैं, और जब हम वहां बैठेंगे बाबा के समीप तो उसके वाइब्रेशन हम में नहीं समाएंगे, बिल्कुल टच में रहेंगे हम उसके, उसकी शक्तियां हम में भरती रहेंगी। इसलिए ऐसी आत्माएं सृष्टि पर श्रेष्ठ पाठ बजाने के लिए पहले आ जाती हैं, क्योंकि उनकी शक्तियां, उनकी प्योरिटी सबसे ज्यादा है। और जब हम सतयुग में हैं, हमारी प्योरिटी देवताओं के चेहरे कांति से भरपूर, कंचन काया, चमकते हुए चेहरे, अति सुंदर, लेकिन इस सुंदरता में कोई वासना नहीं, कोई इम्प्योरिटी नहीं, ऐसे चेहरे कि जिनके दर्शन करके दर्शन करने वाले भी पवित्र हो जाएं, ऐसी हमारी प्योरिटी गोल्डन एज की। तो बाबा ने बहुत अच्छा कहा उस दिन, स्वप्नों तक भी संपूर्ण पवित्रता हो जाए, सबकॉन्शियस माइंड भी पवित्र हो जाए, जरा भी इम्प्योरिटी न रहे, तो तुम्हारे प्योर वाइब्रेशंस प्रकृति को भी पावन करेंगे, देह भी पवित्र आत्मा भी पवित्र। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, ऐसी पवित्रता किसी महान आत्मा धर्मात्मा की नहीं रही, जिनका देह भी पावन हो आत्मा भी पावन हो, और जिनकी प्योरिटी स्वयं पवित्रता के सागर से आई हो। देखो धर्म पिताओं की बात देखो आप, वो भी पवित्र थे और उनकी प्योरिटी बहुत टॉप क्लास थी, लेकिन उनकी पवित्रता से प्रकृति पावन नहीं हो रही थी, उनकी पवित्रता दूसरों को पवित्र नहीं बना रही थी। और बाबा की महान आत्माओं की प्योरिटी दूसरों को भी पवित्र बना रही है, संसार के परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभा रही है। तो अपनी प्योरिटी को खुद महत्व देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी प्योरिटी बहुत बड़ी चीज है, ये प्रभु देन है हमें, ये गॉडली गिफ्ट है, ये बहुत बड़ा अस्त्र है हमारे पास। अपनी प्योरिटी को महत्व देंगे तो हम इसको बढ़ाते भी चलेंगे। और ये ध्यान रखना है कि जिसके पास संपूर्ण प्योरिटी होती है उसका जीवन निर्विघ्न रहता है। इम्प्योरिटी विघ्नों का आह्वान करती है। अब इस प्योरिटी को परफेक्ट करने के लिए अपनी भावनाओं को, अपनी दृष्टि को, अपने संकल्पों को, संबंधों को पवित्र बनाना है। एक बूढ़ी माँ है जिसके पास इम्प्योरिटी अब नहीं है, लेकिन मोह बहुत ज्यादा है, पोतरे उनके भी बच्चे हो गए हैं, उनमें मोह, उनकी चिंता, तो इसको प्योरिटी नहीं कहते। इसमें प्योरिटी का बल उस आत्मा को नहीं मिलता है, क्योंकि जहां प्योरिटी है वहां सुख शांति है। कभी इस पे मुरली चली बाबा की, अगर तुम्हारे जीवन में अशांति आती है, अगर तुम्हारे मन में दुख होता है, तो समझ लो इम्प्योरिटी है। इस सूक्ष्मता से हमें इस धारणा को देखना है। तो बहुत अच्छी पवित्र आत्माएं बाबा ने तैयार कर दी हैं, और इस प्योरिटी को बढ़ाते चलें ताकि हमारी प्योरिटी का प्रकाश संसार के अंधकार को दूर करता चले। अब एक 5-point plan बना लें, अपनी प्योरिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे। बोलो, बोलना आपको है। पहली बात, आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस। बहुत अच्छी बात है, हम सब साथ में रहते हैं, आत्मिक दृष्टि से हमारी प्योरिटी बहुत बढ़ती है। और एक्चुअली तो संपूर्ण प्योरिटी की ये पहचान है कि उन्हें आत्माओं के सिवाय और किसी तरफ कुछ दिखाई नहीं देगा। हर मस्तक में चमकती हुई ज्योति। दूसरी धारणा, स्वमान बताओ। नहीं, पहला स्वमान, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, पवित्रता का फरिश्ता हूं। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब कोई व्यक्ति इसका शुरू में अभ्यास करता है तो इम्प्योरिटी जागृत हो जाती है, उसे घबराना नहीं है, जागृत हो सकती है, कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं परम पवित्र हूं। और इसके लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस है अपने देव स्वरूप को सामने देखना। मैं कैसा पवित्र हूं, ऐसा देव स्वरूप, तो फिर इम्प्योरिटी परेशान नहीं करेगी। तीसरी धारणा, पांच स्वरूपों का अभ्यास, स्वदर्शन चक्र, पांचों स्वरूप का अभ्यास करते करते, क्योंकि हमारे पांचों स्वरूप संपूर्ण पवित्र हैं, उनका अभ्यास करते करते हमारी प्योरिटी बहुत बढ़ती जाएगी। एक ऐसी धारणा बताएं जिससे जिसका हमें परहेज करना है। ये कुमारों को बतानी, इंटरनेट का परहेज। बहुत अच्छा बोला, क्योंकि बहुत कुमार कुमारियां अच्छे काम करते हुए इंटरनेट पर फिर बुरी फिल्में देखने लगते हैं। बिल्कुल, सबको जानना चाहिए ये गंदगी का डब्बा है जो सबके पास आ गया है। मच्छर घर में पैदा कर लिए हूं बहुत सारे, रात को सुख से सोना चाहते हूं। वो ऑल आउट भी काम नहीं करेगी, मच्छरदानी भी काम नहीं करेगी, वो तो घुस के खाएंगे शायद, रात सोने नहीं देंगे। ये गंदगी का डब्बा सभी ने रख लिया है, नो डाउट। ये विज्ञान का बहुत अच्छा वरदान है, इसका सदुपयोग हमें और दूसरों को सुख दे सकता है। इंटरनेट की खोज खराब नहीं है, लैपटॉप खराब नहीं है, लेकिन हम उस चीज का यूज कैसे करते हैं। जैसे हमारा चाकू, अच्छी चीज है ना, कितने काम चाकू से होते हैं, लेकिन कोई गुस्से में दूसरे को ही मार डाले तो वो चाकू की गलती नहीं है। तो हम सभी इस एक परहेज पर बहुत ध्यान दें। कैसे करेंगे कि जिस मार्ग से हमने मुख मोड़ लिया है, अब उस तरफ हम देखें क्यों, क्या उसको देखकर हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, हमें फिर वापस वहीं आना पड़ेगा। इसलिए अब कहीं स्लिप नहीं होना, अपने मन को भटकने के सभी द्वार बंद कर देने चाहिए, मन बुद्धि स्वच्छ करनी है। अब ये समय आ गया है, मैं आप सबको फिर से वो बात याद दिला दूं जो स्वयं को भी रोज याद दिलाना है। बाबा ने कहा जब विनाश काल आएगा तो माया के पांचों शत्रु तुम्हारे ऊपर फुल फोर्स से वार करेंगे। जिसके अंदर कोई भी विकार दबा हुआ होगा वो जग जाएगा। हमें सावधान रहना है, मैं बताना नहीं चाहता, पर जब कोई समाचार देता है ये व्यक्ति इतने समय से ज्ञान में था छोड़ दिया, छोड़ने का एक ही कारण होता है और कोई कारण नहीं, इम्प्योरिटी। संशय नहीं, संशय तो बहुत पीछे का कारण है, पहला कारण है इम्प्योरिटी। जिसमें बहुत अच्छी पवित्रता है उनको ये संशय वन से कोई असर नहीं करता है, वो अपने मार्ग पर स्ट्रांगली आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आप सबके सामने स्पष्ट कर दूं, बाबा का पाठ देखकर किसी को संशय तो नहीं उठता, प्रभु लीला है ना। ये आते ही एक मिनट में आ गए थे बाबा, आते ही वरदान देने लगे, लोगों को पता ही नहीं चला सबको के आ गए बाबा। फिर से ओम शांति से शुरू की बोलना, बाबा के इन कर्तव्यों को, इस शक्ति को सब अच्छी तरह जान लें तो कोई संशय नहीं रहेगा कि जो पाठ चल रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट। कोई ये सोच लेते हैं बाबा तो चला गया अब गुलजार दादी बैठी है, नहीं, बाबा ही पार्ट प्ले कर रहा है। ये सब जानकर हर सीन का आनंद लेना है। वो समय होता है डेढ़ घंटा तो बाबा हमारे बीच में रहे ना, दो घंटे वो समय होता है बाबा से बहुत शक्तियां स्वयं में बढ़ने का, ये दिन याद आया करेंगे। अब वो समय आ रहा है जब ये दिन याद आए। उस दिन दादी जानकी की तबीयत भी बहुत खराब थी, बहुत खराब, मुझे तो आज बताया डॉक्टर ने, इतने जो उनके साथ थे, इतना ज्यादा दर्द कि बस क्या करें, कैसे आए दादी यहां। जब उल्लाह दादी ने कहा मैं भी नहीं जाऊंगी फिर तो दादी के पास कुछ ऐसी चीज है कि वो एनर्जेटिक हो जाती हैं कुछ सुन के, और वो दर्द गायब हुआ और फिर यहां आई। आप देख ही रहे थे दादी की तबीयत कितनी ढीली थी। तो इस सब बाबा की बहुत बड़ी शक्तियां काम कर रही हैं, इसलिए किसी भी तरह का डाउट करने की जरूरत नहीं, इसे समझदारी पूर्वक साक्षी होके देखना है, संशय पूर्वक नहीं, विवेकपूर्ण साक्षी भाव। तो सभी और बात बताएं, अभी तीन हुई चार, प्योरिटी की चार हो गई, पांचवी चीज है बहुत अच्छा योग अभ्यास। कोई सोचे ऐसे ही हमारी प्योरिटी परफेक्ट हो जाएगी, ऐसे नहीं होती। बहुत अच्छा योग बल चाहिए, क्योंकि जन्म जन्म के ये संस्कार हैं, हजारों साल के संस्कार हैं। किसी के बहुत कड़े रहे हैं, किसी के लाइट रहे हैं। किसी ने हजारों साल से अपना ग्रस्त जीवन सहज और नॉर्मल बिताया है, तो किसी में ये वासनाओं की गंदगी बहुत रही है हजारों साल से, उनको यहां कठिनाइयां होती हैं। इसलिए योग बल से अपनी पवित्रता को परफेक्ट करना है। योग बल के बिना काम नहीं चलेगा। मैं देखो एक बात बहुत खोल के पहले से ही कहता था, हमारे पास कुमार आते हैं बहुत सारे, ज्ञान लेने वाले भी कुमार बहुत होते हैं, और 5 साल में उनकी जनसंख्या आधी रह जाती है। फिर अगले 5 साल में बहुत बढ़ जाते हैं, फिर अगले 5 साल में आधी हो जाती है। ये क्यों चलता है खेल? योग नहीं करते अच्छा। और जो कुमार अच्छा योग कर रहे हैं, बाहर रहने वाले भी, वो अमर कुमार हैं। ऐसे बहुत हैं, मैं बाहर जाता हूं बहुत मिलते हैं, मैं उन्हें कहता हूं तुम तो पूर्वज हो, बहुत महान हो, चाहे जीवन में कोई संघर्ष भी किया हो, पर तुम अमर कुमार हो, इस पर भगवान बहुत ज्यादा राजी रहेगा। तो योग बल परम आवश्यक है प्योरिटी का आनंद लेने के लिए। इसलिए सभी कर्म क्षेत्र पर रहते हुए 3 अभ्यास आराम से किए जा सकते हैं। आत्मिक दृष्टि, अच्छा स्वमान, और बीच बीच में कोई भी योग अभ्यास। बहुत ज्यादा मदद मिलती है पानी चार्ज करके पीने से, दूध चार्ज करके पीने से। पानी दूध को दृष्टि दो, 7 बार संकल्प करो मैं परम पवित्र आत्मा हूं। ये पवित्र पानी देह में जाएगा, और जो बहुत ज्यादा पानी है हमारे देह में 70% से भी ज्यादा, वो चार्ज हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा, और इसका इफेक्ट अंग अंग को शीतल करेगा। बहुत बड़ी धारणा है कर्म इंद्रियों को शीतल करना। चार्ज पानी, भोजन पवित्र खाना, ये बहुत आवश्यक है अपनी प्योरिटी को बढ़ाने के लिए। तो जैसे जैसे समय समाप्ति की ओर जा रहा है, ये माया का प्रकोप भी बढ़ता जाएगा। इसलिए अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने को सुरक्षित करने के लिए बहुत अच्छी साधनाओं की जरूरत है। सब मन से अपने को तैयार करें। हमें पवित्रता का सुख लेना है, हमें बाबा के इस महान कार्य में पवित्र वाइब्रेशंस फैलाने हैं। इसलिए पवित्रता के सब्जेक्ट में कोई समझौता नहीं। स्वीकार है? गृहस्थ वालों को स्वीकार है? कोई समझौता नहीं। माताएं बहुत स्ट्रांग हैं, कई बहुत स्ट्रांग। बहुत खुशी होती है हमें जब वो कहती हैं, हमें तो पवित्र रहना है, तुम कुछ भी करो, हम तो हो गए, प्रभु के हो गए, होली हो गई। तो ऐसी दृढ़ता अपने जीवन में परम आवश्यक है। 3 धारणाओं पे सब ध्यान देंगे, हाईएस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट। 3 का नशा हो जाए। बाबा ने कभी ये 2 शब्द बोले थे, रोज याद करो मैं होलीएस्ट एंड हाईएस्ट आत्मा हूं। तो ये दोनों चीजें बढ़ती जाएंगी, रिचेस्ट बाद में जोड़ा इससे। अब हम सभी, जब तक ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा, प्योरिटी की फीलिंग में स्थित होकर योग करेंगे और संसार को प्योर वाइब्रेशंस देंगे। रेड लाइट, सभी इस फीलिंग में स्थित हो जाएं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। अंग अंग से पवित्रता की सफेद किरणें चारों ओर फैल रही हैं। डबल लाइट फरिश्ता, परम धाम में पवित्रता के सागर से बाबा देखें, उन्हें उनकी पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अब उनकी पवित्र किरणें नीचे मुझ में समा रही हैं और मुझ में समा कर फैल रही हैं।